दिन भर रविवार 9 अगस्त मैं हूं निखिल रंजन। बिहार के भविष्य की किसी योजना का जिक्र नहीं, विरोधी नेताओं पर हमले में खोई रही प्रधानमंत्री की परिवर्तन रैली।
मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है।
भारत प्रशासित कश्मीर में दो अलग अलग मुठभेड़, एक सैनिक और दो चरमपंथियों की मौत। साम्राज्यवादी राजा से धर्म प्रचारक तक का सफर, फैला उजियारा में आज सम्राट अशोक की कहानी।
Where Ashoka was unmatched, even among the Mauryans, was in the art of messaging. He had messages.
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बिहार में चुनाव की तारीख अभी घोषित भी नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच वाक युद्ध तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में एक चुनावी रैली में नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो केंद्र की विकास की कोशिशों को राज्य तक पहुंचने नहीं देते हैं। मोदी ने कहा कि गंगा जी तो बहती है, लेकिन अगर हम उल्टा लोटा लेकर जाएंगे तो कोई बूंद लेकर नहीं आएंगे। वहीं नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया और कहा कि पिछली बार मोदी ने DNA पर टिप्पणी की और बिहार का अपमान किया था, लेकिन इस बार भूल सुधारने के बजाय बिहार को बीमारू प्रदेश बताकर चले गए। अमरीकी राज्य फर्गसन में निहत्थे काले युवक माइकल ब्राउन की हत्या को एक साल पूरा होने के मौके पर आज शहर के लोग घटनास्थल पर जमा होने वाले हैं। एक साल पहले एक गोरे पुलिस अधिकारी ने 18 वर्षीय माइकल ब्राउन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद अमरीका में कई विरोध प्रदर्शन हुए और नस्लीय भेदभाव और इससे जुड़ी नीतियों को लेकर अमरीका में बहस छिड़ गई थी। फर्गसन के कई संगठनों के एक गठबंधन एक्शन काउंसिल के रेवरेंड ओसजे फूसेगू ने कहा कि अब भी समाज में वो बदलाव नजर नहीं आ रहे जो होने चाहिए। हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि नेतृत्व की नई पीढ़ी उभर रही है, जो पुलिस और सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के खिलाफ वैश्विक विरोध का हिस्सा है। तो ये एक ऐसा पल है जब युवा हिंसा के खिलाफ खड़े होंगे और टैंकों, आंसू गैस और रबर बुलेटों के आगे नहीं झुकेंगे। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा पल है और शायद मुक्ति का भी रास्ता है, लेकिन हमने तंत्र में वो बदलाव नहीं देखे जो जरूरी है। ये थे रेवरेंड ओसजेफू सेकू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लंदन मैराथन के मुख्य कार्यकारी निक बिटल ने कहा है कि विश्व में एथलेटिक्स का संचालन करने वाली संस्था IAAF को डोपिंग का सहारा लेने वाले संदेहास्पद खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए। निक बिटल ने कहा है कि IAAF को कड़े टेस्ट शामिल करने चाहिए। उनका यह बयान लंदन मैराथन के विजेताओं के ब्लड टेस्ट के परिणामों पर उठे सवालों के बाद आया है। ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया था कि लंदन मैराथन में पिछले 12 साल में 7 बार ऐसे खिलाड़ी विजेता रहे जिनके ब्लड टेस्ट शक के घेरे में रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में एक घर से 5 बच्चों और 3 वयस्कों की लाशें बरामद हुई हैं। इसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पुलिस अधिकारी जब ह्यूस्टन शहर के इस घर में पहुंची तो वहां गोलीबारी हुई, जिसके एक घंटे बाद एक शख्स ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं और आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे। गया में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बहुत तीखे हमले किए। हमला कितना तीखा था ये इससे भी समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जता दी है। नीतीश कुमार ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रैली में भीड़ भी बहुत जमा हुई थी। लोगों ने बड़े धैर्य के साथ प्रधानमंत्री की बात भी सुनी और उनके साथ सीधे संवाद में शामिल भी हुए, लेकिन ये रैली उनमें बहुत उत्साह या जोश जगाने में कामयाब नहीं हुई। ऐसा उन लोगों का मानना है जो उस रैली में मौजूद थे। रैली का विश्लेषण करेंगे थोड़ी देर में, पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या। रोहित जोशी की रिपोर्ट।
क्या बिहार में परिवर्तन चाहिए? बिहार का भला करने वाली सरकार चाहिए?
गया के गांधी मैदान में हुई भाजपा की परिवर्तन रैली में अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उन्हें सुनने जुटी भीड़ को भी शामिल कर लिया।
करना चाहिए, इसलिए भाइयों बहनों आज मैं बिहार की जनता के पास आया हूँ।
रैली में नरेंद्र मोदी ने बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला।
मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा।
मोदी ने बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन पर भी तीखी टिप्पणी की।
जनता जे, दमन डी, उत्पीड़न यू, ये जेडीयू ये जनता का दमन और उत्पीड़न, और वो आरजेडी रोजाना जंगल राज का डर। आप मुझे बताइए, बिहार को ऐसे लोगों के हाथ में सौंपा जा सकता है? 25 साल जिन्होंने बर्बाद किया उनको मौका दिया जा सकता है?
प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में बिहार के आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा का एजेंडा साफ दिखाई दिया है। भाजपा इन चुनावों में शिक्षा और बिजली को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है।
हिंदुस्तान में औसत प्रति व्यक्ति करीब करीब 1000 किलोवाट बिजली की खपत है, जबकि बिहार में 150 किलोवाट भी नहीं है। भाइयों, कहां 1000 और कहां 150। ये आपको अंधेरे में रखने वाले पाप किसने किया है? 25 साल की 2 सरकारों ने किया है कि नहीं किया है? 25 साल के 2 मुख्यमंत्रियों ने किया है कि नहीं किया है?
परिवर्तन रैली को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के प्रचार अभियान में हो रहे खर्च को निशाना बनाया।
नीतीश कुमार जी पूरा जीवन समाजवादी होने का दम भरते रहे, अब तक जदयू ने 300 करोड़ रुपया प्रचार में खर्च कर दिया है।
उधर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि राजद और जदयू पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी अशोभनीय है।
यह देश के इतने बड़े नेता के मुंह से शोभा नहीं देता है। आरजेडी को रोजाना जंगल राज का डर कहना और जनता दल यू को जनता का दमन और उत्पीड़न बनाना, आप साबित करिए, साक्ष्य दीजिए।
नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्र की ओर से बिहार सरकार को सहयोग न देने के भी आरोप लगाए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और उसके बाद नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आपने इस रिपोर्ट में सुनी, जो पेश कर रहे थे रोहित जोशी। दैनिक हिंदुस्तान के राजनीतिक संपादक विनोद बंधु भी इस रैली में मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि रैली में आए लोगों का मूड कैसा था।
पहला तो ये था कि भीड़ अच्छी थी और लोग आए प्रधानमंत्री को सुनने और परिवर्तन रैली करने में भाजपा को सफलता मिली। लेकिन दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री के भाषण में जो प्रतिक्रिया जोश नहीं दिखी, क्योंकि जो अपेक्षा लेकर शायद लोग आए थे प्रधानमंत्री को सुनने, वो उस तरह की अपेक्षा नहीं पूरी हो रही थी। जैसे वो बिहार के बारे में कुछ घोषणा करते या फिर गया के बारे में कुछ घोषणा करते या फिर कोई ऐसी बात करते जो आने वाले समय में बिहार के विकास की कोई तस्वीर होती, तो उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर अटैक में समय ज्यादा लगा दिया और बिहार की स्थिति को अन्य राज्यों की तुलना करते हुए दर्शाया। तो ये बहुत ज्यादा इससे लोगों में जोश नहीं दिख रहा था, उनके जैसे बहुत तालियां नहीं बज रही थी, बहुत लोग नारे नहीं लगा रहे थे, लोग सुन रहे थे उनकी बात को बहुत गंभीरता से, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर हुआ होगा, क्योंकि इस तरह के भाषण हम रोज हो रहे हैं बिहार में।
तो उन्होंने चुनाव से क्या हासिल होगा अगर सरकार नहीं आती है तो, या बीजेपी की सरकार आती है तो क्या बदलेगा बिहार में, ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखाई, ऐसा कुछ वादा नहीं किया, ऐसा कोई भरोसा नहीं दिलाया कि कुछ बदलने वाला है?
असल में वो ये बता रहे थे कि बिहार के साथ चुनौती क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम है बिहार में, यहाँ 5-6 लाख बच्चे बाहर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और 25,000 सीटें हैं, ये तो बता रहे थे। लेकिन ये 5 लाख कैसे हो जाएगा या इसी तरह की और अन्य बातें भी हैं, तो वो ठोस रूप से पेश नहीं कर पाया या उन्होंने कोई इस पर कोई जिक्र ही नहीं किया अपने भाषण में कि उनके पास क्या योजना है बिहार को बदलने की। तो ये बात निश्चित रूप से थोड़ी सी बाद में चर्चा में रही लोगों में कि प्रधानमंत्री ने कुछ बताया नहीं, प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये बताया कि इनका डर दिखाया, लालू के साथ नीतीश चले गए हैं, नीतीश लालू एक हो गए हैं, तो अब जंगल राज शुरू हो जाएगा, ये बार बार इस पर उनका फोकस था। तो वो डर जी जाति के लोगों को हो सकता है दिखे, लेकिन उस समय भी जो जी जाति अन्य जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको उस तरह का डर नहीं होता है, क्योंकि उनके पास गंवाने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए वो बहुत खुश नहीं होते। जैसे उन्होंने बिजली के बारे में पिछली बार भी ये बात हुई थी कि बिजली की स्थिति बेहतर हुई है बिहार में, हो सकता है किसी इलाके में 12 घंटे रहती हो, किसी घंटे में 16 घंटे रहती है, लेकिन जहां बिजली कई सप्ताह में एक दिन आती है, दो दिन आती है, तो विजिबल है, दिख रहा है लोगों को। तो उसको कहना कि बिजली नहीं मिलती है, लोगों से पूछना चाह रहे थे बार बार, तो उस पर रिस्पॉन्ड लोग नहीं कर पा रहे थे उस रूप में, मुजफ्फरपुर में भी नहीं किया था और यहाँ भी लोग उसी तरह से उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे कि हाँ बिजली नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो कोरिलेट नहीं हो रहा था पूरा मामला।
लालू प्रसाद यादव हैं और इधर नीतीश कुमार हैं, इन दोनों ने बड़ी तुरंत जो है उनके भाषण पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसमें इन दोनों नेताओं पर हमला बहुत तीखा था क्या?
बहुत तीखा हमला किया उन्होंने, और जैसे मुजफ्फरपुर में उन्होंने राजद की परिभाषा दी थी कि रोजाना जंगल राज का डर, आज उन्होंने फिर जदयू की भी परिभाषा बताई कि जनता दमन उत्पीड़न पार्टी, तो वो एक तरह से अटैक ही था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कौन चंदन कुमार है और कौन भुजंग प्रसाद है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बिहार में पूरा भाषण जो केंद्रित था वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर केंद्रित था, और एक तरह से वो सिर्फ यही बता रहे थे कि ये दोनों फिर वापस आ जाएंगे तो बिहार में जंगल राज पार्ट टू आ जाएगा, इसलिए आप बिहार में सरकार बदलिए।
दैनिक हिंदुस्तान के राजनीतिक संपादक विनोद बंधु बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की रैली में मौजूद लोगों का मूड कैसा था। बीबीसी रेडियो पर सुन रहे हैं आप दिन भर, और आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। भारत प्रशासित कश्मीर में सेना ने आज ये दावा किया है कि उत्तरी कश्मीर के केरन और तंगधार सेक्टर में दो अलग अलग घुसपैठ की कोशिशों में एक सैनिक और दो चरमपंथी मारे गए। कश्मीर में हिंसा की घटनाओं में ऐसे वक्त बढ़ोतरी हुई है जब अलग अलग स्तरों पर भारत पाकिस्तान में बातचीत की कोशिशें तेज हुई हैं। इस महीने के आखिर में दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात होने वाली है। ताजा घटनाक्रम पर रियाज मसरूर की ये रिपोर्ट सुनिए।
श्रीनगर में स्थित भारतीय सेना की 15वीं कोर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल एनएन जोशी ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के टंगडार और केरन क्षेत्रों में कल रात से घुसपैठ की अलग अलग घटनाएं घटी हैं और बाद में चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई जो अभी भी जारी है। प्रवक्ता के मुताबिक अभी तक इन झड़पों में दो चरमपंथी और एक कश्मीरी सैनिक मारे गए हैं। सैनिक अधिकारियों का कहना है कि अस्थायी सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल के टंगडार और केरन सेक्टरों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है जो मौसम की खराबी के बावजूद जारी है। सेना का कहना है कि कल रात टंगडार के निकट सशस्त्र चरमपंथियों ने भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की। इन्हें चैलेंज किया गया तो उन्होंने फायरिंग की, जिसमें कुपवाड़ा का ही रहने वाला बशीर अहमद वार मारा गया। इनके बारे में सेना का कहना है कि वो टेरिटोरियल आर्मी के सैनिक थे। कुपवाड़ा के कई क्षेत्रों में सेना ने स्थानीय युवकों पर आधारित रेजिमेंट्स बनाई हैं। टंगडार की झड़प में किसी भी चरमपंथी के मारे जाने की इतला नहीं है। इस बीच सेना ने बताया कि निकटतम केरन सेक्टर में भी चरमपंथियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें दो चरमपंथी मारे गए और दो सैनिक घायल हो गए। जुलाई महीने में भी ऐसी ही कई घटनाएं घटी और घाटी के शहरी क्षेत्रों में भी सुरक्षा बलों पर हमले किए गए। पिछले महीने भी उत्तरी कश्मीर के ही टंगडार क्षेत्र में सेना ने बताया कि पाकिस्तान की छजोला पोस्ट के छोर से 6 से 7 चरमपंथियों ने घुसपैठ का प्रयास किया, लेकिन जब इन्हें भारतीय कंट्रोल वाले दर्शन पोस्ट के पास रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में सूबेदार बीपी थापा समेत 4 सैनिक घायल हो गए, लेकिन अस्पताल ले जाते हुए इनमें से 3 की मृत्यु हो गई थी। सैनिक अधिकारियों का कहना है कि बर्फ पिघलने के साथ ही घुसपैठ के प्रयास बढ़ गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर में हिंसा का स्तर बढ़ रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया जा रहा है। पिछले हफ्ते भी जम्मू के उधमपुर इलाके में सुरक्षा बलों की एक गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में एक चरमपंथी मारा गया और एक को जिंदा गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए चरमपंथी के बारे में दावा किया गया कि वो पाकिस्तानी नागरिक नवीद हैं, जिसने पहले अपना नाम कासिम और उस्मान बताया था। इसकी पूछताछ के लिए भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में ही हैं। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बीबीसी रेडियो पर दिन भर में अब वक्त है उस खास सीरीज का जिसका इंतजार आपको पूरे हफ्ते रहता है, यानी कि फैलाओ जियारा। भारत में जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं उनमें बहुत ही कम हैं जिनके शासन का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के 2 सिरों तक हो। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ऐसे ही राजा थे जिनके साम्राज्य की सीमा भारत के 2 सिरों तक जाती थी। इतिहासकार सुनील खिलनानी की वो खास पेशकश इनकार्नेशंस का हिंदी संस्करण फैलाओ जियारा में आज सम्राट अशोक की कहानी सुनेंगे, वो सम्राट जिनके जीवन का आधा हिस्सा साम्राज्य के विस्तार में तो आधा धर्म के प्रचार में बीता। आइए उनकी विरासत पर नजर डालें मोहनलाल शर्मा के साथ।
Paul, where can we buy stamps?
यहाँ डाक टिकट कहाँ मिलेंगे?
उस तरफ पीछे की ओर।
ये दिल्ली का एक बड़ा डाकघर है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ मामूली लेन देन भी आपको भारत के अतीत की याद दिलाता है।
You have revenue stamps?
आपके पास रसीदी टिकट भी होंगे, यानी रेवेन्यू स्टैम्प?
हाँ हाँ है, हैं।
20 रुपए के देंगे?
हाँ बिल्कुल लीजिए।
हर बार जब भी कोई भारतीय नागरिक या भारत आने वाला पर्यटक बाजार में किसी को नोट देता है या कोई चिट्ठी डाक से भेजता है, हर बार जब कोई भारतीय अधिकारी किसी दस्तावेज पर सरकारी मुहर लगाता है तो वो सभी 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने एक प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रतीक है प्रस्तर पर उत्कीर्ण 4 दिशाओं में 4 सिंह। इस शक्तिशाली और कालजयी प्रतीक का निर्माण भारतीय इतिहास की एक महान और रहस्यमय शख्सियत 3री शताब्दी ईसा पूर्व के एक सम्राट ने किया था। उनके विचार बहुत लंबे समय तक भुला दिए गए थे, खासकर ये विचार कि शासक को अपनी प्रजा की आस्थाओं की विविधता को स्वीकारना चाहिए। लेकिन 20वीं शताब्दी में आधुनिक भारत को प्रेरणा देने वाले ये विचार फिर सामने आए। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर।
His rediscovery is dramatic. For centuries, the man is unheard of.
अशोक की खोज नाटकीय है। मेरा मतलब है कि सदियों तक उसका कहीं कोई अता पता नहीं था, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह एक अखिल भारतीय साम्राज्य का सम्राट था। इतिहास में शायद यही एकमात्र ऐसा वक्त था जब भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भूभाग एक ही शासक के अधीन था।
सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए जो कामना करता हूँ, वही कामना सभी मनुष्यों के लिए करता हूँ। इस लोक और परलोक दोनों में उनका कल्याण हो, उन्हें आनंद प्राप्त हो। तुम नहीं समझते कि मेरी ये कामना कितनी तीव्र है, और अगर तुम में से कोई इस बात को समझता भी है तो भी वो मेरी मनोकामना की व्यापकता को नहीं जानता।
अशोक के बारे में विस्तार से हमें पिछली शताब्दी में ही पता चल सका। जिस समय अशोक गद्दी पर बैठे, उस समय रोम और कार्थेज के बीच प्रथम प्यूनिक युद्ध हो रहा था। फारस में खूनी संघर्ष चल रहा था और चीन सम्राट अपनी महान दीवार बनवा रहा था। अशोक के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के लिए हमें धार्मिक गाथाओं, विशेषकर बौद्ध कथाओं और उत्तरी कर्नाटक के कनगनहल्ली जैसे स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर होना होगा।
This image here at Kanaganahalli is one of the most exciting archaeological.
कनगनहल्ली से मिली ये छवि हाल के समय की सबसे रोचक पुरातात्विक खोजों में से एक है। इसमें एक राजा है जो बहुत निश्चिंत दिखाई दे रहा है। उसके इर्द गिर्द 3 परिचारिकाएं हैं, जो निसंदेह महिलाएं हैं। राजा अपने कूल्हे पर हाथ रखे अपनी बगल में खड़ी महिला से बिल्कुल सट कर खड़ा है। वो महिला संभवतः उसकी रानी है। इस छवि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके ऊपरी हिस्से में ब्राह्मी लिपि में राय अशोक अंकित है। ये पहली ऐसी छवि है जिस पर अशोक का नाम खुदा है। राजकुमार अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में विशेष उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है। कहते हैं पिता उसे नापसंद करते थे और उन्होंने अशोक को दूर के किसी नगर में एक विद्रोह को कुचलने के लिए भेज दिया। इस नगर में अशोक को एक स्थानीय व्यापारी की पुत्री से प्रेम हो गया और ये समय अशोक ने आमोद प्रमोद में बिताया। पिता की मृत्यु के बाद अशोक ने अपने बड़े भाई और 6 अन्य भाइयों, कुछ कथाओं के अनुसार ये संख्या और भी ज्यादा थी, उनको मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सच जो भी हो, सिंहासन के लिए खूनी संघर्ष बहुत लंबा चला और अशोक 4 वर्ष के संघर्ष के बाद ही 34 वर्ष की आयु में अपना राज्याभिषेक करवाने में सफल हो गए। कहा जाता है जब कुछ स्त्रियों ने अशोक की कुरूपता के बारे में कुछ कहने की हिमाकत की तो उसने उन्हें जिंदा जलवा दिया। सिंहासन पर बैठने के बाद नृशंस स्वभाव के अशोक ने साम्राज्य विजय का अपना अभियान शुरू किया। कहा जाता है कलिंग युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और इससे भी अधिक बंदी बनाए गए। रक्त रंजित इस विजय के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य बंगाल की खाड़ी तक फैल गया और अगले 37 वर्षों तक अशोक इस विशाल साम्राज्य पर शासन करता रहा। भारत का इतना विशाल भूभाग 2000 वर्ष बाद ही फिर से किसी एक शासन के अधीन आ पाया और वो शासन था ब्रिटिश राज।
Where Ashoka was unmatched even among the Mauryans was in the art of messaging. He had messages.
अपनी अद्भुत संप्रेषण कला के कारण अशोक मौर्य सम्राटों में अनूठे हैं। उन्होंने अपनी संपूर्ण साम्राज्य में शिलाओं पर संदेश खुदवाए जो आज 2000 साल बाद भी हमें उनके विचारों से रूबरू कराते हैं। उनके संपूर्ण साम्राज्य में बड़ी संख्या में सैकड़ों या शायद हजारों की संख्या में ये शिलालेख फैले हुए थे। उनमें से ज्यादातर हमें नहीं मिले हैं, लेकिन कई काल के थपेड़ों से सुरक्षित बच गए हैं। स्तंभ और उत्कीर्ण शिलाएं अशोक के विचारों, उनकी अपनी सोच के वास्तविक प्रमाण हैं।
जहां भी शिला स्तंभ या शिलाखंड हो, वहां ये आदेश उत्कीर्ण करवाया जाए ताकि ये लंबे समय तक विद्यमान रहे। ये इसलिए उत्कीर्ण करवाया गया है ताकि जब तक मेरे पुत्र और प्रपौत्र राज करें, सूर्य और चंद्र चमकते रहें, तब तक ये आदेश पढ़ा जा सके।
The words were chiseled in several languages. I'm standing in front of one now here in Delhi.
अभी मैं दिल्ली के एक शिलालेख के सामने खड़ा हूँ। ज्यादातर शिलालेखों में अशोक का उल्लेख अन्य पुरुष यानी वह के रूप में किया गया है, लेकिन किसी किसी शिलालेख में प्रथम पुरुष मैं शैली का भी प्रयोग है, जिससे हमें इन शिलालेखों में आदेश देने वाले व्यक्ति की क्षणिक झांकी मिलती है। अशोक के शिलालेख कई भाषाओं में हैं। कुछ शिलालेख ग्रीक और अरमाइका लिपियों में भी मिले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विद्वान प्रोफेसर रोमिला थापर ने कई दशकों तक अशोक का अध्ययन किया है।
Clearly, this is not just someone who sat up one morning and said, "I must issue these edicts and tell my subjects what I'm doing."
अशोक के शिलालेख पढ़ने पर हर बार एक नई बात सामने आती है। इन्हें पढ़कर लगता है कि अशोक ने ये आदेश बस अपनी प्रजा को अपने कार्यों की जानकारी देने के लिए ही जारी नहीं किए होंगे, बल्कि उसने इस पर विचार किया होगा कि वह अपने संदेश कैसे दे कि लोगों को अपने कामकाज के बारे में पता चल सके।
अशोक के सर्वाधिक प्रभावशाली विचार 12वें शिलालेख में हैं, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का आह्वान किया गया है। अशोक इसे वाक संयम कहते हैं।
जो कोई अपने धर्म के प्रति अतिशय भक्ति के कारण अपने धर्म का गुणगान करता है और अन्य धर्मों की निंदा करता है, वो अपने धर्म को ही हानि पहुंचाता है। इसलिए विभिन्न धर्मों के बीच मेलजोल होना चाहिए। सभी को दूसरों के मतों को सुनना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।
ऐसा लगता है कि कलिंग विजय में हुए भीषण रक्तपात ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर दिया। उसने अपना पछतावा दुनिया को बताया और इसके बाद जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, एक रहस्यमय मोड़। अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपना लिया, जो भारत में अभी नई थी। एशिया भर में बौद्ध परंपराओं में अशोक को आदर्श माना जाता है, लेकिन एक शासक के रूप में अशोक का बौद्ध धर्म से संबंध सहज नहीं था, और अशोक द्वारा बौद्ध विचारों को अपनाने को धर्मांतरण कहना भी सही नहीं है। अशोक के शासन के समय में भारतीय समाज में जितनी विविधताएं थीं, उतनी पहले कभी नहीं थीं। और विविधताओं से भरे ऐसे समाज को, ऐसे राज्य को एक साथ जोड़े रखने के लिए अशोक को एक ऐसी विश्व दृष्टि चाहिए थी जो पर्याप्त लचीली हो। इस आवश्यकता ने जन्म दिया एक आविष्कार को, और वो आविष्कार था धम्म का असाधारण विचार। धम्म आध्यात्मिक पवित्रता या पावन रीति रिवाजों पर नहीं, बल्कि दुनियावी आचार व्यवहार पर आधारित था। ये विचार सहिष्णुता का हामी था व हिंसा के खिलाफ था। प्रोफेसर रोमिला थापर,
The principles to which he gives the greatest attention,
वह जिन सिद्धांतों को सबसे ज्यादा महत्व देता है, उनमें सबसे पहला सिद्धांत है विभिन्न मंत मंत्रांतरों का सह अस्तित्व। सबको मिलजुल कर सह अस्तित्व की भावना से रहना सीखना होगा। अन्य मनुष्यों के संप्रदायों का सम्मान करना होगा, क्योंकि औरों के संप्रदायों का सम्मान करके ही तुम अपने संप्रदाय का सम्मान कर पाओगे। यह धम्म का मूल सिद्धांत है। मुझे यह दिलचस्प लगता है कि इस बात पर कितना ज्यादा जोर दिया गया है। शायद उस समय संप्रदायों के बीच बहुत बैर भाव रहा होगा।
धम्म के अनुसार प्रजा के कल्याण, उनके स्वास्थ्य और सुख के बारे में सोचना और इस दिशा में कार्य करना शासक का कर्तव्य है। राजा का यह भी फर्ज है कि वो सड़क के किनारे बरगद या आम के वृक्ष लगवाए और यात्रियों के भोजन व विश्राम का प्रबंध करे। किसी शासक की निजी आस्था और पद की सार्वजनिक जिम्मेदारियों के संबंध में ये प्रारंभिक सिद्धांत है, लेकिन अशोक ने स्वयं सदैव इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया, विशेषकर अपने बाद के वर्षों में जब उनकी धार्मिक आस्था चरम पर थी। उनका धार्मिक समर्पण इतना अधिक बढ़ा कि उन्होंने अपना पूरा राजकोष खाली कर दिया। बौद्ध कथाओं के अनुसार उन्होंने अपना सब कुछ, यहां तक कि अंतिम आम तक, दान में दे दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। पतन की इस गाथा को खुद अशोक के कनगनहल्ली शिलालेख की दुर्दशा से समझा जा सकता है। कनगनहल्ली वही स्थल है जहां सम्राट अशोक और उनकी तीन परिचारिकाओं की आकृति मिली है। ये आकृति मूल रूप से यहां से 3 किलोमीटर दूर सन्नति गांव में मिली थी। सन्नति अशोक के साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण चौकी थी। इस क्षेत्र से कई बड़े और छोटे शिलालेख मिलते हैं, लेकिन ये शिलालेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सबसे अलग है क्योंकि इसके बीचों बीच एक बड़ा सा छेद है और इस छेद की एक वजह है। महज 25 वर्ष पहले इस इलाके में एक तूफान आया जिसने सन्नति के हिंदू मंदिर की छत उड़ा दी। मंदिर का पुजारी सोया हुआ है, वेदी का द्वार वही खोल सकता है। अशोक का ये शिलालेख असल में चंद्रा लांबा मंदिर के वेदी ग्रह में देवता के स्थान पर मिला था। देवता की मूर्ति इस शिलालेख पर स्थापित थी और शिलालेख उल्टा रखा हुआ था और उसमें एक बड़ा छेद किया गया था। शायद लोग अशोक को भूल गए होंगे, शिलालेख पर अंकित लिपि पढ़ नहीं पाए होंगे, नहीं जानते होंगे कि इस पर किसकी आकृति बनी है। और चूंकि शिला का आकार उपयुक्त लगा होगा इसलिए इस शिला का इस तरह से प्रयोग कर लिया होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि चूंकि अशोक बौद्ध धर्म के समर्थक थे और इस बात को शायद ब्राह्मण पुजारी पसंद न करते हों और उन्होंने सोचा हो कि शिलालेख के अनादर का सबसे अच्छा तरीका है इसे उलटकर उस पर अपने देवताओं को स्थापित कर दिया जाए। नियति का खेल देखिए। अशोक की खोज की ब्रिटिश इतिहासकारों ने और वही अशोक भारत के राष्ट्रवादियों के लिए न्याय, अहिंसा और राजनीतिक एकता के सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रेरक प्रतीक बन गए। भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए अशोक इतना प्रेरणादायी व्यक्तित्व था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अशोक को कमोवेश नए राष्ट्र राज्य के संरक्षक संत का दर्जा दे डाला। अशोक के 4 सिंह न केवल डाक टिकटों पर अंकित हैं, अपितु भारत का ये राजकीय चिन्ह संपूर्ण भारतीय जीवन का अभिन्न प्रतीक चिन्ह बन गया है और सार्वजनिक जीवन में भी संयम और आत्मनियंत्रण का सम्राट अशोक का संदेश आज भारतीयों के लिए चेतावनी भी है और प्रेरणा भी।
फैला उजियारा का ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से।
जी निखिल, थोड़ी देर पहले हरारे में जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच एक मार्च 2020 मुकाबला समाप्त हुआ। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 80 रन से करारी मात दी। न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 198 रन बनाए, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 8 विकेट खोकर 118 रन ही बना सकी। उधर टेनिस के कोर्ट पर ATP सिटी ओपन का फाइनल जापान के केई निशिकोरी और अमरीका के जॉन इस्नर के बीच खेला जाएगा। उधर चेन्नई में आयोजित की जा रही त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज के 3rd मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका ए को बेहद आसानी से 8 विकेट से मात दी।
और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बिहार के गया में प्रधानमंत्री ने रैली में लगाया नीतीश कुमार पर बिहार के विकास की कोशिशों को रोकने का आरोप। नीतीश ने भी जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अमरीकी शहर फर्गसन में काले युवक माइकल ब्राउन की हत्या को 1 साल पूरा होने के मौके पर आज शहर के लोग घटनास्थल पर जमा होने वाले हैं। 1 साल पहले एक गोरे पुलिस अधिकारी ने 18 वर्षीय माइकल ब्राउन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्वी चीन के जेजियांग में अधिकारियों के मुताबिक शक्तिशाली तूफान टाइफून साउडलोर के कारण बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। इजरायली पुलिस ने कहा है कि वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी घर पर हुए हमले के मामले में 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। यमन में सरकार का समर्थन कर रही सेना दक्षिण यमन में स्थित जिंजिबार शहर को हूती विद्रोहियों से छुड़ा लिया गया है। PVC समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। संडे दिनभर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी रात 9:30 बजे घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। स्टूडियो मैनेजर अजीत सारथी के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।